मित्रों, पिछले ही दिनों मेलबर्न में लेखकों का एक फोरम हुआ था, एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस की और भारत के दलित लेखकों की गोष्ठी हुई। तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आज श्री अजय नावरिया के साथ, जो कि हिंदी में लिखते हैं। तो नमस्कार अजय जी।
नमस्कार।
ये बताइए कि अभी अभी आपका भाई बहुत अच्छा फोरम हुआ है, गोष्ठी हुई है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस की और भारत के दलित लेखकों की गोष्ठी हुई।
अब ओरिजिनल या इंडिजिनियस लेखक और उनका और हमारे यहाँ से जो लोग आए, लगभग 10 लेखक हम लोग यहाँ पर थे, जिसमें 4-5 महिला लेखिकाएं थी और 4-5 पुरुष थे लेखक। तो उनमें सभी नहीं, सिर्फ दलित नहीं थे, उसमें आदिवासी भी थे, जो हमारे यहाँ ट्राइब्स जिन्हें कहा जाता है, आदिवासी कहते हैं।
जी जी।
तो यहाँ और उनके साथ हमने जब बातचीत की, तो ये बातचीत 2 दिन का ये प्रोग्राम था और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें हमने पब्लिशिंग और सब के बारे में बात की। तो ये बातचीत, एक तो ये कि एक नई दुनिया को हमारे सामने खोलती है ना। मैं सच कहता हूँ कि शायद जो दलित आंदोलन इतने सालों से भारत में चल रहा है और अब धीरे धीरे एक विमर्श के रूप में आदिवासी भी शामिल होने लगे हैं, जबकि पहले आदिवासियों का कोई आंदोलन ऐसा नहीं दिखाई देता, मगर दलितों का एक लंबा मतलब इतिहास रहा है आंदोलन का, डॉक्टर अम्बेडकर के समय से। और आप जानते हैं कि ये 125वीं उनकी जन्म शताब्दी का वो मनाया जा रहा है। तो और सरकार जिस तरह से इसके लिए बहुत पूरी तरह से कटिबद्ध है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर इसको कर रही है, ये इस बात से भी देखने को मिलता है कि जब आप यहाँ के मेलबर्न के जो कॉन्सुलेट को पता लगा, कॉन्सुलेट जनरल को, कि हम लोग इस तरह आ रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे स्वागत में एक रिसेप्शन रखा। तो हमने यहाँ जाना कि हम ऑस्ट्रेलिया को, या खास तौर से पूरे जो भी भारत के बाहर के, जिन्हें हम विदेश कहा करते हैं अक्सर, न्यूजीलैंड वेस्ट, जिसे वेस्ट कहते हैं आमतौर पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया तो वेस्ट नहीं है उस अर्थ में, मगर जिसे हम वेस्ट कहते हैं, हम उसे बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत मॉडर्न, बहुत डेमोक्रेट मानते हैं और हम ये सोचते हैं कि वहाँ उस तरह की कोई समस्या नहीं है रेसिज्म के अलावा। रेसिज्म एक नस्लवादी रवैया तो कहीं भी हम देख सकते हैं, मगर उसके अलावा हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी। मगर जब हमने कल परसों ने दो दिन लगातार उनको 1 और 2 तारीख को सुना, तो हमें पता लगा कि उनकी कई तरह की समस्याएं हैं और ये समस्याएं दलितों से तो उतने हद तक नहीं मिलती हैं जितना भारत के आदिवासियों से मिलती हैं।
अच्छा।
हाँ, मैंने बातचीत में ये जाना पूछा कि क्या आपके साथ किसी तरह के छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार भी लोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीधे तौर पर कोई नहीं करता। तो मैंने कहा कि भाई, सीधे तौर पर तो शहरों में हमारे यहाँ भी कोई नहीं करता, क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून होता है, आपकी पहुंच होती है वहां तक, पुलिस होती है, तो आदमी डरता है। दूसरी बात यह होती है कि आमतौर पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं शहर में, वो इतने सेंसिटाइज हो चुके होते हैं किन्हीं मुद्दों पर कि वो सीधे किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। हाँ, उनके मन में हो सकता है कि वो उनके मन में उस तरह की भावना रहे, ये ठीक है कि वो हो सकता है कि आपको घर पर इन्वाइट ना करें। कुछ लोग करते भी हैं, मतलब मेरा तो अनुभव ये है दिल्ली जैसे शहर में कि हम सब लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं, साथ बैठते हैं, खाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है, कोई सोचता भी नहीं है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं, जैसे रिजर्वेशन का, आरक्षण का एक मुद्दा है, या और दूसरे लैंड रिफॉर्म को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिसमें ये सब बातें उठती हैं, तो वो अधिकार के मुद्दे हैं।
बात करें साहित्य की, तो आपको क्या कुछ समानताएं लगी साहित्य में यहाँ के इंडिजिनस या एबोरिजिनल लोगों की लेखनी में?
ये तो बहुत जल्दी होगा कुछ भी इस बारे में कहना, क्योंकि उनका साहित्य हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, और हमने सिर्फ उनकी रीडिंग्स थी, उनकी पोएट्री रीडिंग थी और कुछ उनका प्रोज रीडिंग था। तो हमने ये पाया कि उसमें एक ताजगी तो है, उसमें एक दुख है। और ताजगी जब मैं कह रहा हूँ तो ताजगी का अर्थ ये नहीं है कि मतलब उसको पढ़कर आपको कोई खुशी मिलती है, आपको एक तरह का पेन, एक तरह की पीड़ा, एक यातना से आपको गुजरना पड़ता है। हुआ ये कि जब एक लेखिका जो अब ओरिजिनल राइटर हैं यहाँ की, वो पढ़ने लगी तो उनसे नहीं पढ़ा गया, उनका गला रुंध
बराबर
गया और वो कुछ देर संभाला उन्होंने, फिर थोड़ी देर बाद कोशिश की मगर वो नहीं पढ़ पाई।
ओहो
तो फिर उनकी हेल्प दूसरी किसी एक लेखिका ने की और उसको पढ़ा, तो वो इतना अटैच्ड है वो अपने राइटिंग से कि हम इसे समझ सकते हैं कि ये मिशन राइटिंग है। तो वो ये वास्तव में ये कोई पैसा कमाना या यश कमाने का उनका साधन
नहीं,
नहीं है,
ये तो दिल के
बल्कि
टुकड़े
हाँ
हैं
ये दिल के
उनके
उनकी अपनी बातें
जी।
हैं जो वो दुनिया को सामने रखना चाहते हैं कि हमने क्या जिया, क्या भोगा है, हम कैसे मर मर कर यहाँ तक पहुंचे हैं।
जी
तो
बिल्कुल, आपके
ये जो
लेखने की बात करें अजय जी, तो क्या मुख्य धारा के जो लेखक हैं, जैसे कि प्रेमचंद ने भी लिखा, मुल्कराज आनंद ने भी लिखा दलितों के बारे में, उनकी
जी जी
पीड़ाओं
जी
के
जी
बारे में,
जी
लेकिन
बिल्कुल बिल्कुल।
आपकी लेखनी में क्या अंतर है ये बताइए हमें।
देखिए एक एक तो चीज मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि जिन गैर दलितों ने दलितों के बारे में लिखा है, हम लोग उनके प्रति बहुत आभारी हैं, है ना। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ,
ठीक
खास तौर से प्रेमचंद के लिए। प्रेमचंद जी ने जितना लिखा, मतलब चाहे बहुत कम लिखा उनके, अगर मगर फिर भी बहुत लिखा। उनका उपन्यास रंगभूमि हो, उनका उपन्यास गबन है जिसमें देवी दीन खटीक के बारे में इतना विस्तार से उन्होंने और इतना इतना अच्छा चरित्र बनाकर उसको दिखाया है। मगर समस्या ये है कि हम 1936 में उस समय प्रेमचंद को देख रहे हैं, आज समय 2016 का चल रहा है, बिल्कुल वक्त बदल चुका है। और ये वक्त इस कदर बदला है कि जो हमारा हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसने सब कुछ बहुत तेजी से बदला है।
सही,
तो इस बदलाव ने हमारे सामने नई तरह की समस्याएं सामने खड़ी कर दी हैं जो
हाँ
हमारी राइटिंग में आती हैं। जैसे शहर जब बने तो एक नई तरह की समस्या आई कि लोग शहरों में आने लगे, उनको उनको मकान किराए पर लेने थे, वहां समस्याएं आती थी, वो अपनी आइडेंटिटी छिपाने लगे। अब इससे मुश्किल ये हुई कि जो व्यक्ति आइडेंटिटी छुपाता है, वो आप समझ लीजिए कि वो अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी छुपाता है। तो
सही
जो 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 जिसे प्रेरणा स्रोत बनना था वही छिप गया, तो लगेगा कि हमेशा ये दलित ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि दिखेंगे वही लोग जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, और जो पढ़ा लिखा समाज है, जो बुद्धिजीवी है, वो छिप गया। इन सबको मैंने अपनी राइटिंग में लिखा। मुश्किल यह है कि जब तक पता नहीं है, जब तक ये नहीं पता कि ये कौन है व्यक्ति, तब तक सब कुछ ठीक है, मगर जैसे ही पता लगता है वैसे ही एक अदृश्य दीवार दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है, जो इसे भी पता है कि खड़ी हो चुकी है, और मगर वो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि वो
उसका स्पर्श
दोनों,
नहीं कर
हाँ,
सकते।
उसको उसको सिर्फ महसूस किया जा सके।
बड़ी खुशी हुई कि आप और 10 अन्य लेखक यहाँ पर आए हैं,
जी जी
और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और दलित लेखनी के इस अभियान के साथ जो कि इन दिनों वैश्विक बन रहा है।
जी बिल्कुल। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना समय इस मोमेंट, इस मिशन के लिए निकाला, इस आंदोलन के लिए निकाला, क्योंकि ये वाकई वाकई ही ये जो दलित साहित्य है, ये जिसे हम लोग, जिसे राजेंद्र यादव कहते थे, यातना, संघर्ष और स्वप्न, राजेंद्र यादव जी के साथ मैं हंस में जुड़ा रहा, तो
जी
वो अक्सर कहते थे कि एक पीड़ा है जिसको वो झेल रहे हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं और एक स्वप्न देख रहे हैं एक नए समाज का। तो ये पूरा जो दलित राइटिंग है वास्तव में अंबेडकर के उसी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और आखिर में दलित साहित्य वहीं पहुंचेगा जिसे हम वास्तव में मानवता का साहित्य कहते हैं। अभी वो उसकी शायद बहुत मध्य की स्थिति हुई है, मगर इसे अभी और आगे जाना है। आगे के 10 साल में शायद मुझे लगता है कि वो वक्त आएगा जब दलित साहित्य के संबंध में और मुख्य धारा के बीच में कोई भेद नहीं रहेगा, कोई
जी
विभाजक रेखा नहीं रहेगी, वही शायद मुख्य धारा बन जाएगा, क्योंकि वही गरीबों का, वंचितों का और उन सभी वर्गों का जो जिनको जिनको सताया गया है, जिनको जिनको वंचना की गई है, जिनके साथ, चाहे वो स्त्री हो, दलित हो, ट्राइबल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो सब वर्गों का साहित्य धीरे धीरे मुख्यधारा का साहित्य बन जाए, क्योंकि अंततः साहित्य जो है, मैं ये जरूर कहूंगा कि साहित्य की भूमिका बिल्कुल पूरा महाभारत के उस योद्धा की तरह है, बर्बरीक की तरह, जिसने कहा था जब वो चल रहे थे घर से युद्ध में, तो उनकी माँ ने कहा कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे बेटा, तो उन्होंने कहा माँ से व्यम पराजिता, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो पराजित हो रहा होगा। तो साहित्य हमेशा पराजित की तरफ से लड़ता है।
सुंदर, तो ये बहुत सुंदर विचार है आपका जी। आपकी इस भेंट वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कुमार जी।